ये जो शहादत है, ये जो गवाही है ना, ये तो ऑप्शनल है, यानी मर्द भी हो सकता है इसकी जगह। औरत की अगर जरूरत हो तो फिर आए, वो भी एक औरत के ऊपर सारा बोझ नहीं डाल दिया, नहीं दूसरी तुम्हारे साथ हो ताकि तुम लोगों को सपोर्ट मिले, एक अगर भूल भी जाए तो दूसरी हो। अब मुझे बताइए, जितनी भी मैंने आपको औरत की क्वालिटीज बताई है और मर्द की भी बताई है, गवाही देने के लिए कौन ज्यादा सुटेबल है किसी किसी फाइनेंशियल मैटर में? क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर की बात हो रही है, याद रखिए, ये कर्ज की बात हो रही है, कितने पैसे थे, क्या मामला तय हुआ था, कितने किसने किसको देने थे, कब का कहा था। मिसाल के तौर पे कोई कहता है आज मैं आपको आधी अमाउंट दूंगी, 6 महीने बाद मैं आपको क्वार्टर दूंगी, बाकी क्वार्टर, और उसके 3 महीने बाद मैं उसको आपको बाकी क्वार्टर दूंगी। और ये बोलते बोलते के अंदर ही भूल गया कि कितना पहले देना था तो कितना बाद में। अब औरत के लिए बताएं मुझे सिर्फ ये सारी बातें इमोशंस के साथ, सेंसिटिविटी के साथ, भूल के साथ, फिर जुर्रत और हौसले की कमी के साथ, फिर ये उसका फील्ड भी नहीं है जिसके अंदर उसको, एक होता है ना नेचुरली आपको कोई चीज का होता है, जैसे आप रोटी पकाना, खाना बनाना, नेचुरली आपको शौक, सफाइयां, ये वो, घर की और अपनी आपकी भी बनाओ से नेचुरल है, ये इंसान की जैसे औरत के अंदर ही रख दिया गया। लेकिन ये चीजें नहीं है नेचुरली उसके अंदर, शी हैज टू मेक एन एफर्ट के इनको समझे, और ये भी बड़ी उसके बोझल लगती है। मर्द के लिए यही चीजें ऐसे ही रोज की बातें हैं, हिसाब किताब और ये कि क्या फाइनेंसेस और ये सब चीजें और लोन्स और इन चीज के मामला। अब औरतों की बातों से अंदाजा लगा लें, एक मजलिस के अंदर औरतें बैठी हैं, दूसरी मजलिस में मर्द बैठे हैं, बातें क्या हो रही होती। तो वो कारोबारी मामला या ये लेन देन और इन चीजों की बातों में औरतों को ज्यादा नहीं इंटरेस्ट होता। तो बताएं इस जब इंटरेस्ट भी ना हो उस वक्त, और फिर ये कि वैसे भी फिजिकली कमजोर है और बहस उससे की जाए, जैसे वकील बहस करते हैं, आगे से पूछते हैं और बातें करते हैं, मुझे बताएं कि औरत ज्यादा सुटेबल है कि वो गवाही दे या मर्द? अल्लाह ने तो उसको इस चीज से एग्जेम्प्ट कर दिया कि तुम्हें नहीं, तू ये तुम्हारे लिए। और अदालतों के अंदर जाना औरत के लिए कितना मुश्किल है। फिर आगे आप देखेंगे आता है ये बात आएगी कि जब बुलाया जाए गवाह को गवाही देने के लिए, ये देखिए आगे, वला या अब शुहदाउ इज़ा मा दुउ, और ना इनकार करे गवाह जब वो बुलाए जाए। अब आप देखें औरत अगर गवाह है और उसको अदालत में बुलाया जाता है, मिसाल के तौर पर वो मूव हो गई है, तो अब वो केस तो चलते हैं, आगे जाते हैं, अब ये जब ट्रांजेक्शन हुई थी, जब ये मामला हुआ था वो 1 साल पहले का, उसके बाद होते होते उनके मामला बिगड़ गए, अदालत में मसला चला गया, औरत मूव हो गई बच्चों के साथ कहीं और, अब उसको कहा जा रहा है कि कोई भी गवाह इनकार ना करे जब उसको बुलाया जाए कोर्ट में, अगर आना के लिए बुलाया जाएगा तो उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब मुझे बताएं कोई औरत है उसके लिए कितना मसला होगा, बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के वो जा रही है कई अदालतों के अंदर, आप कितने दिन लगते हैं गवाही देने के लिए, अकेली जाएगी कैसे जाएगी? मर्द के लिए कितना आसान है निस्बतन। अल्लाह ताला ने औरत को इस चीज से बचा लिया, और फिर जब ये जिरा और बहस होती है ना वहां पे, तो औरत की एक फितरी तौर पे है कि घबरा जाती है, कोई कुछ कह दे और कोई बहुत दलीलें दे रहा हो तो समझ नहीं आती कि आप क्या जवाब दें, तो अल्लाह ताला ने उससे भी इसको बचा लिया। ये बात नहीं है इसके अंदर, कोई ये ना समझे कि एक मर्द की गवाही 2 औरतों की गवाही के बराबर है तो इसका मतलब है औरतों का मकाम कम हो गया। नहीं, जहां पे भी कुरान में आया है एक माँ और बाप की औलाद से तुम लोगों को पैदा किया गया, ये आता है। फिर ये कहा गया कि अमल करोगे अगर तो चाहे मर्द करेगा चाहे औरत करेगी, दोनों को अजर सेम है, ये नहीं है मर्द को 2 अजर मिलेंगे औरत को 1। अगर ये कहा जाता ना फिर कोई जुल्म की बात आती, शायद कुछ कहने को हक बजाने को होती, कोई आपके फेयर बात होती। जो भी नेक अमल करेगा औरत को औरत होने की वजह से अजर से महरूम नहीं किया गया। ये तो आपके आज के जो इंसानी मुआशरे हैं वो देखें कैसे महरूम करते हैं, घरों के अंदर अगर बेटी या बीवी को राय देना चाहे तो उस हक से महरूम है, औरतें इनको क्या पता, ये तो वैसे ही उनकी अकल में, विरासत से महरूम कर देते, कहीं पे इल्म से महरूम कर दिया जाता है कि इल्म ही नहीं लेना, इन्होंने क्या पढ़ के करना है लड़कियां। ये तो हमारे मुआशरे जिसमें लड़की की पैदाइश होती है तो रोते हैं, अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं हुक्म दिया या ऐसा कानून नहीं बनाया। माल रखने की औरत को आजादी, अपना नाम कैरी करने की औरत को आजादी, ईसाइत में तो औरत को ये आजादी ही नहीं। फाइनल अथॉरिटी वहां पे वो होती है कि आदमी जो है ना वो उसकी मिल्कियत है, औरत का माल वो खुद नहीं सेल एंड बाय कर सकती। फिर औरत को इस्लाम इतने हकूक देता है, अल्लाह ने देखे कुराने पाक में फरमाया है मर्दों को वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, भले तरीके से साथ इनके साथ जिंदगी गुजारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं तो जाते जाते भी फरमा रहे हैं कि औरतें कमजोर हैं, ये कमजोर है, तुम्हारे पास कैदी की तरह है, क्योंकि निकाह में बंद गई है ना, अब बंदी ही नहीं है, तो तुम इनके साथ भलाई करो। फिर औरत को मर्द की खेती का, खेती होना का किसी के लिए बुरी बात है या फखर की बात है, जिल्लत की बात है या इज्जत की बात है? वो कहते हैं हाय हमें खेती कह दिया, हमें तो कितनी हमारी इंसल्ट हो गई। दूसरे मजहब कहते हैं ये औरत ने ना आदम को, ये हवा ने आदम को फल चखने को कहा था, ये गलती औरत ने कराई है। इस्लाम ये नहीं कहता, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है। ये दूसरे मजहब कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहती है कि पीरियड जो है ना वो औरत की एक सजा है, इस्लाम ये नहीं कहता। अल्लाह ने फितरत में पैदा किया इंसान को, फिर औरत को ये फरमाया कि ये मर्द के लिए सुकून की चीज है, तो बताएं जिससे सुकून हासिल होता है तो इंसान उसकी उसको कदरों कीमत की चीज समझता है या उसको सेकेंड ग्रेड समझता है? तो ये सोचें कुराने पाक में, आपने ये पहले भी पढ़ा, मैंने इस चीज के ऊपर जोर भी दिया था जब तलाक के निकाह की ये बातें आई, तो आप देख रहे थे नोट किया आपने कि अल्लाह ताला औरत की वकालत खुद फरमाता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया औरतों के भी मर्दों पर हकूक है, इसी तरह जैसे मर्दों के औरतों के। घर के सिस्टम को चलाने के लिए हाँ ये जरूर है कि फाइनल अथॉरिटी मर्द को दी, क्योंकि जाहिर है एक सिस्टम, एक ये यूनिट है, जैसे एक कंपनी हो वो दो सरबराहों से थोड़ी चल सकती है। अब दोनों ही कहें कि हम इसके प्रेसिडेंट हैं तो नहीं चल सकती, एक को वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ता है। अब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की बात, फाइनल बात तो उसकी ही होगी ना, उसकी सुननी पड़ेगी। और दोनों कहेंगे हमने चलाना है तो निजाम चल ही नहीं सकता। कोई मुल्क दुनिया में ऐसा देखा जहां पे दो दो सदर हो? कोई कंपनी, कोई इदारा ऐसा देखा दो उसके सीईओ? तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को एक फाइनल अथॉरिटी रखी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मर्द सुपीरियर हो गए पैदाइश में, या अमल में सुपीरियर है, या अंजाम में सुपीरियर है। और खराबी तभी आती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस्लाम को कुरान को सही समझा नहीं होता, जब फैमिली सिस्टम में मर्द खुद को अपने आप को समझने लगते हैं कि हम अकबर हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने जितना दर्जा दिया है ना ये उतने दर्जे पे ही रहना चाहिए, तभी घर की गाड़ी चलती है। जब मर्द भी अपने आप को समझने लगे हम सबसे ही अकबर हो गए, अब बस हम एक दर्जा नहीं ऊपर, हम सारे ही दर्जे ऊपर हो गए और ये तो कुछ भी नहीं, तो फिर खुद ही सोचेंगे क्या हाल होगा। क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसी औरत है जो कि जल्दबाज भी है, जो सेंसिटिव भी है, जो टची भी है, जो इमोशनल भी है, और मैंने बताया कि ये कोई भी बुरी क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि उसके रोल के मुताबिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक अल्लाह ने दी। तो इसलिए इस चीज को नेगेटिव प्रोपेगेंडा इससे नहीं करना चाहिए। आप ये भी देख लें, अक्सर औरतें ये शिकायत नहीं करती हमें भूल ही जाता है हिसाब किताब, हमें भूल ही जाती कोई डेट, वो डेट थी वो तो गुजर ही गई। अपने से रेलिवेंट कामों को सबको वो अच्छी तरह जानती है, जो फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें बहुत अकलमंद है, क्योंकि अल्लाह ने उसको उसी फील्ड के लिए किया है ना, उसमें मर्द कमजोर होते हैं, उनको नहीं इतना समझ आती है कि इसको क्या देना है, किसे क्या लेना है, किसे क्या करना है, घर की क्या सफाई, क्या डेकोरेशन, क्या पकाने का, क्या ये मर्दों का फील्ड नहीं होता। ये अक्सरियत की बात करें, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते, तो उसके लिए वो चीज है। तो मर्द की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, औरतों की मुख्तलिफ है, और गवाही देने के लिए जो सलाहियतें मर्द के अंदर है ना, जो क्वालिटीज, उनकी जरूरत ज्यादा है। ये नहीं है कि कोई भी एक से दूसरा ऊंचा हो गया, यार मुझे गवाही का हक मिल गया तो मैं बहुत ऊंचा हो गया, और इसको जो है ना एक गवाही का मिला हुआ तो इसलिए नीचे हो गए। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि गवाही देना क्या कोई इनाम है या कोई जिम्मेदारी है, ये पहले बताएं। है कोई जिम्मेदारी है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इनाम नहीं है जो उनको मिल गया हमें नहीं मिला। अगर ये कोई इनाम होता तो औरतें कह सकती थी कि भाई हमारा हक कम कर दिया गया। हालांकि आप देखें कोर्ट में जाके जो जो दूसरी जो दूसरा मुखालिफ फरीक होता है उसके खिलाफ गवाही देना, उसकी दुश्मनी मोल लेना, ये तो एक मुसीबत है। बाज दफा गवाही देने के लिए एक से शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, सफर की मुश्किलात उठानी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए औरत को इस चीजों से बरी रखा। अब जहां पे, हाँ एक बात समझ ले, और जहां पे ऐसे मामलात हैं जिनमें औरत ही उन मामलात को जानती है, वहां पे एक औरत की गवाही काफी है, उसमें मर्द की गवाही की जरूरत ही नहीं, यानी मर्द की गवाही को नहीं माना जाता। बात समझ आ रही है या नहीं? मर्द की गवाही वहां पे नहीं मानी जाती उन मामलात में जो औरत से ही कंसर्न है। मिसाल के तौर पे ऐसे मामलात जो पीरियड से मुतल्लिक है, ऐसे मामलात के जैसे मसलन कोई दूध पिलाने से मुतल्लिक है या बच्चे की पैदाइश से मुतल्लिक है, ऐसे मामलात में मर्द की गवाही नहीं मानी जाएगी, और एक औरत की गवाही काफी। अगर औरत इस्लाम के नजदीक कोई बहुत ही कमतर चीज होती तो फिर औरत की गवाही को काफी क्यों करार दिया गया? आप एक इसकी मिसाल देखें, बुखारी में यह हदीस आती है कि उकबा बिन हारिस जो थे वो बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से शादी की और एक और औरत ने कहा, एक और औरत थी कोई, उसने कहा कि मैंने तो तुम दोनों को दूध पिलाया हुआ। जाई मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दोनों तो रजाई बहन भाई हो। तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके ये वाक्य अर्ज किया, आपने फरमाया तुम उस औरत को अब निकाह में किस तरह रख सकते हो जबकि ये गवाही आ चुकी है उस औरत को तलाक दे दो, क्योंकि वो उनकी रजाई बहन बन गई ना। फिर तो अब यहां पे देखें एक औरत ने गवाही दी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया, तो अब ये नहीं कहा गया नहीं किसी मर्द की गवाही लेकर आओ तुम्हारी क्या आधी गवाही है, नहीं, ऐसी चीज के अंदर एक औरत की ही गवाही काफी है। तो इस तरह के मामलात के अंदर फिर औरत की गवाही कोई मोतबिर समझा जाएगा। इसी तरह जहां पे सिर्फ औरतें हों, जहां पे ये चीजें हों, यहाँ पे हाँ जो किसास के मामलात हैं, हदूद के मामलात हैं, उसमें जाहिर सी बात है इन चीजों को रखा जाए तो औरतों के लिए कि मुश्किल हो जाएगी गवाही देना, माली मामलात है। लेकिन हमें शायद औरतों को ये शौक है कि नहीं अगर मर्द कोई चीज कर रहे हैं तो हमने भी जब तक उनके बराबर होके ना की तो तब तक हम कुछ काबिल नहीं है। तो अगर मर्द भी ये कहें कि इन मामलात में औरतों की सुनी जाएगी, वो सहाबी अगर कह देते कि इसमें तो कोई मर्द की गवाही नहीं तो कैसे मानी जाए, या मर्द की गवाही यहाँ पे कोई मोतबिर है ही नहीं ऐसे मामलात में, तो मर्द भी कहें लो अब हमारी तो यहाँ पे गवाही नहीं मानी जाती, यहाँ पे हमारी गवाही कबूल ही नहीं की जाती, तो हमें तो कोई इंसान ही नहीं समझा गया। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये जो लोग इस तरह के प्रोपोगंडास करके लोगों को मुतनफिर करना चाहते हैं ना, तो ऐसी चीजों में ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए, इस चीज की तहकीक करनी चाहिए। और जब आपको ये एतमाद हो ना कि मेरा अल्लाह किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करने वाला नहीं है, इसमें भी कोई हिकमत ही है, मेरे लिए ही कोई फायदा होगा, तो फिर इंसान को इत्मीनान रहता है। और जब औरतें इस चीज के ऊपर ईमान नहीं रखती तो वो फिर तड़पती रहती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हम तो बहुत मजलूम है, हमारे तो साथ तो जुल्म करता है इस्लाम, नाउज़ु बिल्ला। तो अब ये देखें सारी बात यहां तक आ गई, इदा मादाहू तक आ गई शहादत के बारे में कि गवाह कौन होने चाहिए, गवाह कैसे होने चाहिए कि वो जिन पे आप राजी हो, फिर ये कि जब गवाह को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करे, ये गवाह के ऊपर जिम्मेदारी है। और दूसरा माना इसका ये भी है कि जब गवाह से वाकया पूछा जाए तो खामोश ना रहे, इनकार ना करे, बल्कि गवाही दे। वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली, और ना तुम सुस्ती करो कि तुम लिखो इसको छोटा हो या बड़ा हो एक मुकर्रर वक्त तक के लिए। यानी तुम लिखो चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, मामला छोटी अमाउंट का हो बड़ी अमाउंट का। देखिए सेकंड टाइम ये ताकीद आ रही है कि लिखो, लिखना जरूरी है, और इसमें इसको अपने आप पे बोझ ना समझो, और बल्कि स्पेसिफिक डेट के साथ लिखो, अजल के साथ लिखो ये कौन सी डेट तक का है। कोई ये ना कहे कि हाँ भाई इसकी क्या जरूरत है लिखत पढ़त की, ये तो छोटी रकम है अब इसको क्या लिखवाना। ठीक है, लेकिन जब इंसान लिखता है ना तो उसको अजर भी मिलेगा, और अजर किस बात का मिलेगा कि अल्लाह के हुक्म के को उसने इम्प्लीमेंट किया। वालेकुम अक्सतु इंदल्लाह, ये बात ज्यादा इंसाफ वाली अल्लाह के हम, अल्लाह के नजदीक ये बात में इंसाफ है। इस लिखने का फायदा क्या है, इस तहरीर की हिकमत क्या है, दिस इज मोर जस्ट, जस्ट है क्योंकि कर्ज देने और लेने वाले के लिए इसमें अगर कोई बात भूल जाती है, कोई चीज हो जाती है, तो इंसाफ क्या होगा कि उसमें से जो भी लिखा हुआ उसमें से देख ले। तो जरूरी नहीं होता कि कोई बेईमानी कर रहा हो इस वजह से, डिसऑनेस्टी हो तो इस वजह से कोई दूसरे के ऊपर जुल्म कर लेता है या कोई मसले पैदा होते हैं, बाज दफा वाकई इंसान भूल भी जाता है, तो इंसाफ क्या है लिखा हुआ। वह अकवाम शहादा, और ज्यादा दुरुस्त करने वाली है शहादत को, शहादत की अदायगी में ज्यादा कायम रहने रखने वाली है शहादत को, यानी अदल और इंसाफ के तकाजे इससे बेहतर तौर पे पूरे होते हैं। ये हुक्म पूरे अदल वाला है, गवाही को भी साबित रखने वाला है, क्योंकि जाहिर है अगर कोई भी कहीं भूल चूक किसी से भी हो रही होगी ना, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन देख के भूली हुई बात उसको याद आ जाएगी, ठीक है, वरना गवाही को भी हो सकता है कहीं भूल जाए। और कई दफा ऐसे भी होता है ना, जो आगे बात भी आ रही है, वह अदना अल्लाह ताकाबू, और ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो। कई दफा ऐसे होता है इंसान को लगता है कि अच्छा उसने ये बात कही थी और समझी आपने कुछ और बात, लेकिन जब डॉक्यूमेंट हो जाता है ना तो फिर यानी बिल्कुल क्लियर हो जाती बात। तो ज्यादा गवाही को भी कायम रखने वाली ज्यादा चीज कौन सी है, किताबत। ये नहीं कि बस गवाह बना लिए, किताबत की क्या जरूरत है, बस तुमने देख लिया ना हमने ये किया, नहीं, महज गवाही पे भी आप सिर्फ उसको इनाफ नहीं समझ सकते, और सिर्फ लिखने को भी नहीं इनाफ समझ सकते। कि जैसे मैंने आपको बताया कि लिखने पे कोई इतराज कर सकता है, खुद ही लिख के इन्होंने घर में रख लिया होगा, और गवाहियां भी जो है ना वो क्या पता कि कोई भूल जाए, ठीक है, तो बस पहले डॉक्यूमेंट लिखा जाए। अब देखते हैं आप नीचे विटनेसेस के सिग्नेचर लिखे होते हैं तो फिर वो वहां पे सिग्नेचर करते हैं, तो इससे किसी को भी नहीं शक होगा। देखिए इस्लाम कितना चाहता है कि हारमनी हो, लोगों के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, लोग आपस में दुश्मनियां ना रखें। तो यहां तक तर ताबू तक आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, यहां तक कर्ज का मामला अब खत्म हो गया। अब आगे क्या है मामला, अब आगे मामला है ये अगली जो लाइन है इसके अंदर मामला है जब आप जिसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं वो करते हैं, इल्ला सिवाय, ये सारी बातें आपको करने की जरूरत नहीं है। कौन सी बातें, ये लिखने की, ये गवाह रखने की, ये जितनी भी बातें हुई है ना तताबू तक शुरू से लेके अब तक, एक बात क्या हुई थी, एक अजले मुसम्मा तक लिखो, नंबर टू फक्तुबूहू, नंबर थ्री वस्तशिदू गवाह बना लिया करो, उसके बाद गवाहों की पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद जालिकुम से क्या है, या वाला तस अम उसे क्या है, इस चीज को आगे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया कि छोटा और बड़ा भी कर्ज लिखो, और जालिकुम से क्या है जितनी हिकमतें हैं इसके अंदर वो बता दी। अब ये सब चीजों की ना गवाह बनाने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है, ना कोई स्पेसिफिक डेट मुकर्रर करने की जरूरत है। किस सिचुएशन में एक्सेप्शन कब है इसकी? इल्ला अन तकुना तिजारतन हाजिरतन, जब हाजिर तिजारत हो। हाजिर तिजारत का मतलब क्या, जैसे आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिए और चीज ले ली, अब जरूरत नहीं है कि लिखें और आप गवाह बनाएं और आप ये करें, तब नहीं जरूरत। हाँ अगर लिख लेते हैं ना तब तब भी ठीक है, लेकिन लाजिम नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं दुकान पे, तो देखें यहाँ पे तो खास तौर पे जो भी डीलिंग होती है फौरन वो आपको रसीद देते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपने $20 दिए, उन्होंने आपको 15 वापस लौटा दिए और 5 रख लिए ना, सारा लिखा होता है आपने ये चीज खरीदी, इतने की ये थी, इतने की ये थी, इतने की ये थी, पर पाउंड इतनी थी और आपने इतने पाउंड लिए, सब लिखा ना। तो वो एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप रिटर्न कराने जाते हैं तो रिटर्न पॉलिसी में उनको फिर ये रसीद दिखाते हैं तो हेल्प हो जाती है। तो अगर लेकिन नहीं भी करते, अब अल्लाह ताला ने इसमें इंसान को सहूलत दी, क्योंकि देखिए अगर हर वक्त ये होता, कोई जरा सी माचिस भी लेने जा रहा है, मिर्च लेने जा रहा है, नमक लेने जा रहा है, हर वक्त उसको लिखाई करनी पड़ी, तो पहले जमाने में तो नहीं ना ये कैश रजिस्टर होते थे कि रसीदें फौरन प्रिंट होके निकल रही। तो अगर लिखना पड़ता सौदा तो वो तो दुकानदार तो बैठा सारा दिन यही करता रहता, तो कितनी मुशक्कत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इससे इंसानों को बचाया कि अगर हैंड टू हैंड इस तरह से हो रही है कोई पेमेंट, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। दुदी रूनहा बैना को, तुम लेन देन करते हो आपस में, जो हाजिर तिजारत का लेन देन आपस में करते हो ना, फिर उसके अंदर कोई लिखने की जरूरत नहीं। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, तो नहीं है तुम पे कोई गुनाह कि तुम ना लिखो। समझ आ गई बात? अन तकुना से क्या पता चल रहा है? इल्ला के बाद, कि जब ये सिचुएशन हो। कौन सी सिचुएशन? अन तकुना तिजारतन हाजिर रतन तुदी रूनहा बैना को, जब हाजिर तिजारत हो, जो तुम लेन देन करते हो आपस में, तो क्या करो? फलैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है तुम पे अल्लाह तक तो हुआ कि तुम ना लिखो उसको, कोई हर्ज नहीं, ना लिखने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है, ताकि तुम एक मुश्किल में ना पड़ जाओ। अब इसी तरह बाज ट्रांजेक्शन ऐसे होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी दोस्त ने कहा, और देखे $10 जरा मुझे देना, मैं ये मेरे कम हो गए पैसे, मैं जरा इसको दे दू, मैं बाद में तुम्हें देती हूँ, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। वाय? इसलिए कि इसमें कोई अजल नहीं है ना मुकर्रर, ठीक है, ऐसा लेन देन तो चलता रहता है। वह अशहीदू इदा तबायातु, गवाह बना लो जब तुम बाहम खरीदो फरोख्त करो, जब बै करो, तिजारती मामला तो बड़ी कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो उसमें तुम गवाह बना लिया करो। यानी कि ऐसा सौदा, एक तो छोटा मोटा सौदा खरीदना है ना, जैसे अभी हमने बात की, मगर एक होती है कोई बड़ी ट्रांजैक्शन, कोई बै, तो वो जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो उसमें जरूर गवाह बना लिया करो, ठीक है। हालांकि ये हाजिर सौदा है, फिर भी गवाह बनाना इसमें अच्छा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है और उसके बाद गवाह भी बनाए जाते हैं, और फिर इसी तरह दो कंट्रीज के दरमियान भी जब मुआहदा होता है, तो इसी तरह फिर वो सिग्नेचर कर रहे होते हैं ना, विटनेसेस जो होते हैं, इस तरह आप घर वगैरह लेते हैं तो फिर भी करते हैं। वला युदारा कातिब वला शहीद, और याद रखो ना जरर पहुंचाया जाए कातिब को, लिखने वाले को, और ना गवाह। कैसे जरर पहुंचाया जाता है कातिब को? कातिब को कैसे जरर पहुंचाया जाएगा? मसलन उसको प्रेशराइज किया जाए कि तुम ये लिख लो, उसके ऊपर कोई धोस जमाई जाए। इसी तरह गवाह को कैसे प्रेशर किया जाता है, जरर पहुंचाया जाता है? तो आप देखे थे गवाहों को तो जान से ही मार देते हैं कई लोग, और उनको पता चल गया हमारे खिलाफ गवाही देने जा रहा है, इसीलिए तो लोग डरते हैं कि हम क्यों जो है ना गवाह बने। आपने देखा हमारे मुल्कों में कोई गवाह नहीं बनना चाहता, उनको तो फौरन धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है, थ्रेट्स आने लगती है। इसके अलावा भी देखें, जो इतना सताया जाता है उनको गवाहों को, कि साल के तौर पे सारा सारा दिन बुला के बिठा देते हैं, वो काम अपना कारोबार छोड़ के आए हैं, अब उनके अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, थानों के चक्कर लगवा रहे हैं, फिर पुलिस उनको तंग कर रही है, फिर अब वो किराया अपना लगा के भी आ रहे हैं, फिर अपनी काम भी छोड़ के आ रहे हैं, उनका कितना हर्ज होता है। तो जब कोई गवाह आए उसको तकलीफ नहीं देनी, यानी अब उसकी जो, और कातिब को, कातिब के लिए भी है, दोनों के लिए, इसलिए कि इनकी जो सिक्योरिटी है उसका, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इस्लामिक स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दो लोगों को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। कितना अच्छा निजाम हो जाए ना, देखिए, क्योंकि अगर गवाहों को लोग मार दें या उनको थ्रेट्स आने लगे, वो ही डर जाए, तो देखो, इसीलिए तो हमारे यहाँ आधे केस तो सॉल्व ही नहीं होते, गवाह आते ही नहीं, उनको इतनी थ्रेट्स आ रही होती। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है, अब कोई पढ़े इसको तो पता चले ना कि यहाँ पे क्या हुक्म है। कितना इंसाफ हो जाए हमारे मुल्कों के अंदर अगर इन अहकामात को फॉलो किया जाए। हम कहते तो बड़ी खुशी से कुरान में हर चीज का हल है, वो हर हल है तो तुम उसकी तरफ जाओ भी तो सही, कभी इसको उठा के देखो भी तो सही है। फिर अगर इतने ही तुम कॉन्फिडेंट हो कि कुरान में हर चीज का हल है, तो फिर आओ इसकी तरफ। बस हल तो है, लेकिन हम अपने मसले कुरान से हल नहीं कराना चाहते, यही होता है ना, इसीलिए तो हम नहीं आते इसकी तरफ, ना सीखना चाहते, ना समझना चाहते, ना देखना चाहते इसको, लेकिन फखर से बताते फिरते हैं इसमें हल हर चीज का। किसी को पता चल जाए उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं मिल रहा है, तो चाहे उसको फ्लाई करके वहां पहुंचना पड़े, वहां पे जाता है, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ है, वो किसी किस्म का भी प्रॉब्लम। लेकिन क्या बात है कि हम कहते हैं कि कुरान में हर मसले का हल है और उसके बाद इसकी तरफ नहीं आते, या तो हमारी बात झूठी है। तो कुरान तो हम तो हमें ईमान है कि कुरान तो नहीं झूठ, हमारी ही बात झूठी है, ओके, हम झूठ बोलते हैं, फिर हमें इसका यकीन नहीं, हम मुंह से बोलते हैं बस। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन दोनों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अब तकलीफ किस चीज से पहुंच सकती है, अब देखें गवाह को एक ये भी तकलीफ हो सकती है कि भाई वो पैसे स्पेंड करके आता है, किराया उसका लगता है, उसका टाइम जाया होता है, तो उसको उसके जो एक्सपेंस है उसका, जिसको जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक्सपेंस, जो उसके आने का, उसके खाने पीने का, वहां पे स्टे करने का, वो सारा एक्सपेंस पे किया जाए। इसी तरह अगर वो अपना काम छोड़ के आया है, अपना टाइम दे रहा है, तो उसका उसको पेमेंट की जाए, उसको डराया धमकाया ना जाए, उसको किसी तरह का प्रेशर ना हो। इसी तरह जो कातिब है वो भी, उसको भी कोई ऐसी प्रेशर में आके तंग करके कोई चीज नहीं लिखवा लेनी चाहिए। और इसका दूसरा भी मतलब है, ला युदारा एक है ना, ना जरर पहुंचाया जाए इनको, और ये मजबूर मारूफ भी है, वो ना जरर पहुंचाए, ये कातिब और शहीद भी ना किसी को जरर पहुंचाए। ये कैसे पहुंचा सकते हैं जरर, तो कातिब अदल से ही ना लिखे तो उसने जरर पहुंचाया है ना, और शहीद भी कैसे जरर पहुंचा सकता है। तो कोई गवाही है उसको छुपा लिया, कोई बात है उसको हक के खिलाफ कह दी, तो ये हमेशा हमेशा के लिए, देखिए कयामत तक के लिए कुरान ने कितनी प्यारी इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब हम मुसलमान हैं, हम ही इसको फॉलो ना करें तो कौन फॉलो करेगा, हमने तो इसको बिल्कुल वो बना दिया कि नहीं ये तो बस सवाब कमाने की चीज है। कितनी दफा हम इन आयतों से गुजरे होंगे, कभी किसी को पता था कि ये गवाहों के लिए भी ये लिखा हुआ कुरान में, इनको ना सताया जाए ना ये कोई इनका, इसी तरह ये भी इनको सताना हो गया ना कि इनका मुआवजा दबा लिया जाए, ये अब दे ही नहीं रहे पैसे इनको। वह इन तफालू फसूकुम बिकुम, अगर तुम करोगे ये, क्या करोगे, क्या करोगे, ये जो पीछे बात आ रही है, यानी कातिब या गवाह को तुम तकलीफ पहुंचाओगे, या फिर कातिब और गवाह किसी को तकलीफ पहुंचाए, तो क्या है ये, कोई छोटी बात नहीं है। फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, बेशक वो गुनाह होगा तुम्हारे लिए, ये नाफरमानी है। क्या? और बी आ गया, देखिए फुसूकुम बिकुम, फिस्क के बाद बा, अक्सर ऐसे नहीं आता, ये गुनाह होगा साथ तुम्हारे, यानी ये चिमट जाएगा तुम्हें, ऐसा गुनाह है। देखिए उस माशरे का क्या हाल होगा फिर जिसमें ये गुनाह हो रहा होगा, क्या वहां पे इंसाफ होगा, होगा वहां पे इंसाफ। इसीलिए आज देखिए हमारे यहाँ कितने भी बड़े बड़े इतने क्राइम्स लोगों की नजरों के सामने भी हो जाते हैं, कोई गवाही देने वाला नहीं, लोग डरते हैं। और लोग ये भी कहते हैं हमें मुसीबत क्या पड़ गई, हम अपना सारा काम छोड़ के इन झमेलों में पड़ गए, क्योंकि उनको बहुत सताया जाता है। कातिबों को भी धमकी आने लगती है, उनको भी प्रेशर में डाला जाता है। तो ये इतना गुनाह है बड़ा जो चिमट जाएगा पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी को खराब कर देगा। तो जो बातें तुम्हें समझाई जा रही इनके खिलाफ ना करो, इसको कोई बुरा समझता है? बल्कि लोगों ने तो गुंडे रखे होते हैं इस काम के लिए, कि जो है ना जो इनको जो गवाहों को डराते धमकाते हैं, और आराम से लोग निकल जाते हैं क्राइम करके। बत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, डर जाओ अल्लाह से, ये काम मत करो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें सिखा रहा है, ये बातें तुम्हें किसी और ने सिखाई, ये अल्लाह तुम्हें खुद सिखाता है। देखिए एक बात आपने नोट की, कितनी तवील आयत है और एक एक चीज इसमें डिस्क्राइब की गई है। नमाज के बारे में फरमा दिया गया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, और हमारे नबी ने हमें सिखाई कि किस तरह पढ़नी है। रोजे कह दिया गया रोजे रखो, कैसे रखने ये हमारे नबी से हम सीख लेंगे। हज अदा करो, ये कहा गया सिर्फ, हज का तरीका क्या है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लेंगे। लेकिन कर्ज का मामला ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाता है वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुद तालीम दे रहा है इसकी, खुद अल्लाह ताला सिखा रहा है। इससे पता चला कि दीन के जो मामलात हैं उनको पूरी तरह अंडरस्टैंड करना, इंप्लीमेंट करना कितना जरूरी है। जो चीज अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैंने मैंने सिखाई है, तो क्या उसकी अहमियत नहीं समझते आप, कितनी होनी चाहिए। और तकवा तकवा तकवा, इसलिए कि ठीक है कानून बना देते हैं आप, कानून का खौफ भी एक होता है, मगर खुद सोचें कानून आपके साथ 24/7 तो नहीं ना चिमटा रह सकता। एक हद तक आपको पुलिस का भी खौफ होगा, ये ना पकड़ ले फलां, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना आ जाए, लेकिन वो 24/7 मिनट मिनट तो किसी के साथ नहीं रह सकते ना। हर हर बंदे के साथ तो एक गार्ड नहीं वो खड़ा कर सकते कि भाई सीधे चलना है, तुमने ये नहीं बेईमानी करनी, तुमने ऐसे नहीं करना। एक हद तक ही कानून जाहिर है इंसानों के बनाए में, वो एक हद तक ही किसी को पकड़ भी सकते हैं या एक हद तक किसी को वॉच भी कर सकते। उसके बाद क्या है, ये तकवा है जो इंसान को सीधा रखता है। तकवा जब इंसान के अंदर होगा ना, तो वो हर हाल में, चाहे पुलिस सामने है या नहीं, चाहे हुकूमत है या नहीं, चाहे गार्ड है या नहीं, कोई भी नहीं हो, अल्लाह का डर उसके लिए काफी है कि वो सीधा रहे। और अफसोस से कहना पड़ता है हमारे माशरे में कानून नाम की तो चीज है ही नहीं, तकवा भी नहीं है। अगर तकवा अकेला ही होता ना, तो तब भी बहुत चीजें सही हो जाती, लेकिन तकवा ही नहीं है। इसीलिए कहीं करप्शन है, कहीं किसी की हक तलफी है, कहीं गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है, कहीं इंसाफ नहीं। जब तक याद रखें, कानून तो आप बना लें जितने भी अच्छे से अच्छे कानून बना लें, जब तक उसके साथ तकवा नहीं होगा ना, किसी मुल्क के अंदर अमनो आमान, इंसाफ और सबके हकूक सही से सबको मिल रहे, ये नहीं हो सकता। तकवा तकवा तकवा, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, खुदा खौफी है जो इंसान को हर मामले में सही रखेगी। आखरत की जवाबदेही का एहसास अगर नहीं है तुम्हारे अंदर, तो कानून कब तक तुम्हें संभालेगा? और देखें सदर, वजीर, एमपीए, एमएनए, ये सब लोग जो है ना, हर एक बंदे के साथ थोड़ी हम कहते हैं वो करप्ट वो करप्ट, तो हम खुद क्या हैं? खुद इंसानों के अंदर कोई तकवा ही नहीं। वो आगे घर घर पहरा तो नहीं देने खड़े हो जाएंगे ना, पुलिस के हर घर में आगे खड़ी हो जाए, हर बंदा नाप तोल कर रहा है, एक बंदा तराजू लेके बैठा हुआ उसके साथ भी एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए, एक बंदा गवाही दे रहा उसके साथ भी एक खड़ा हो जाए, एक बंदा बाजार में सौदा सलफ कर रहा उसके साथ भी एक खड़ा हो जाए, घर में आप बातचीत कर रहे हैं आपके साथ भी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तकवा ही है जो आपको सही रखेगा ना, कि मेरे साथ अल्लाह के गार्ड्स खड़े हुए हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, ये हैं जो मेरे किरामन कातिबीन है जो लिख रहे हैं, ये गार्ड्स, इनका एहसास हो तब सही चलेंगे हम। अगर हम यही वेट करते रहते हैं कि पुलिस होगी तो मैं सीधी चलूंगी, तो तकवा फिर कहाँ है हमारे अंदर? अल्लाह का डर तो है नहीं, पुलिस का। याद रखा हुआ अल्लाह हु बिकुल्ली शय अलीम, अल्लाह हर चीज का जानने वाला। उसने जो कानून तुम्हें दिया है ना, वो अपने इल्म की बेसिस पे दिया है। देखें, जिसके पास आधा इल्म हो ना, आप उससे राय नहीं लेते। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मसलन किसी कोई डॉक्टर नहीं और आम आदमी है, तो आप उससे ना आके जाके अपना इलाज नहीं करवाना शुरू करते। तो आप कहते हैं इसके पास इल्म ही नहीं, ये मुझे सही कहाँ बात बताएगा। किसी डॉक्टर के पास जाके आप कोई कानून के नुक्ते नहीं पूछते। आप कहते हैं इसके पास कहाँ इल्म है, ये मुझे सही गाइड नहीं कर सकता। गाइड आपको सही कौन कर सकता है, किसके पास आप जाते हैं? आपको कोई हार्ट की डिजीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, पैर के डॉक्टर के पास नहीं चले जाएंगे। आपको पता है कि दिल का डॉक्टर ही मुझे सही बात बता सकता है। इसके पास इल्म है, तो आप ट्रस्ट किसको करते हैं? जिसके पास उस चीज का इल्म होता है। और अल्लाह कौन है जो बिकुल्ली शैन अलीम है, हर चीज का इल्म रखने वाला, और हम उसकी बात को छोड़ के और हम दूसरी चीजों के पास जाएंगे, वहां से मैं इल्म ले लूं और ये मुझे बता दे कि कैसे चलना चाहिए, वो मुझे बता दे। वो कैसे बता सकते हैं, उनके पास तो हर चीज का इल्म नहीं है। कोई दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता, कितना ही किसी को आप इतना बड़ा समझे, कोई दुनिया में ये कह सकता है? वो जो खुदा बने बैठे हैं नाउज बिल्ला, जो खुद अपने आप को खुदा कहते हैं, वो भी नहीं ये कह सकते कि हमें बिकुल्ली शई नलीम है हम, वो भी नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा, जो अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, समझे ना? तो फिर किसके पास जाना चाहिए गाइडेंस के लिए, किसके पास जाना चाहिए कि सही कानून क्या है, सही रूल्स क्या होने चाहिए कर्ज लेने के देने के? गवाही औरत की आधी होनी चाहिए कि पूरी होनी चाहिए, मर्द के बराबर होनी चाहिए? हाँ, किसके पास जाना चाहिए पूछने के लिए? अल्लाह के पास, क्योंकि वो हर चीज का इल्म रखता है। उसका आधा छोटा मोटा ऐसा इल्म नहीं है, कमजोर इल्म नहीं है, हर चीज का, हर चीज में सब कुछ आ जाता है, माजी हाल मुस्तकबिल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की उसको कोई कैद नहीं है, कोई उसके लिए लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए सब एक ही जैसे हैं, हाजिर और गायब। जो आपके सामने है आपके पीछे, हाजिर गायब आपके लिए है, अल्लाह के लिए कोई चीज गायब है ही नहीं। तो सोचें जरा कि अल्लाह ताला ने, ऐसे रब ने जो बिकुल्ली शैइन अलीम है, उसने लंबी सबसे लेंथी आयत हकूकुल इबाद से मुतल्लिक नाजिल फरमाई, इसलिए कि हकूकुल इबाद में ही हमसे सबसे ज्यादा गलती होती है, और उनमें भी माल की इंसान को इतनी हिर्स होती है ना कि माल में इंसान जरूरी डंडी मार जाता है। जिन लोगों के इंसानों से मामला साफ नहीं है, तो इनकी इबादत उनको वहां पे क्यामत के दिन छुड़ा नहीं सकेंगी। मामलात को सही करें, हकूकुल इबाद में ऊंच नीच ना हो, इसलिए कि क्यामत के दिन, आपको पता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मुफलिस कौन है, सहाबा से पूछा तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह हमारे नजदीक तो मुफलिस वही है जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ चीज नहीं होती, वो कोई दिरहम दिनार वगैरह नहीं होते। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि कयामत के दिन जब वो आएगा तो उसके पास ढेरों नेकियां होंगी, ढेरों नेकियां होंगी, कई नमाज की गठड़ियां हैं, कई हजों की गठड़ियां हैं, कई सदका खैरात की गठड़ियां, इतने अंबार हैं, पहाड़ के पहाड़ हैं जी, इतनी इसने तो नेकियां की हैं ना, इतनी इबादतें करता रहा है। लेकिन किसी को गाली दे दी, किसी का हक मार लिया, किसी का माल दबा लिया, किसी पे तोहमत लगा दी, किसी को कुछ कर दी, तो अब सोचें जब वो सारे लोग आएंगे अपने हक लेने के लिए, किसी को गाली दी है, अब उसने बदला चाहिए उसको यहाँ पे, अब बदला कैसे दिया जाए? अब इसकी नेकी को ले लेंगे, कहा जाएगा कि जाओ ये नमाजों की जो पहाड़ है ना, ये तुम ले जाओ इसकी, और वो तुम्हारे पर तोहमत लगाई थी, ये इसके तहज्जुदों का जो पूरा अंबार, इतनी तहज्जुदें रोज पढ़ती थी, ये तहज्जुदें तुम ले जाओ। और ये जो रोजे रखती थी, ये तुम्हारा माल इसने हड़प किया था, ये रोजे रखती थी, वो तुम ले जाओ इसके सारे रोजे। ये करते 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 अभी इतने लोग खड़े होंगे, अभी इतने लोग इंतजार में होंगे, इसकी तो नेकियां भी खत्म हो जाएंगी। अभी तो बहुत सारे लोगों के हकूक देने हैं, क्योंकि तो रोज का यही काम था। हम नमाजें रोजे रख के समझते हैं ना कि हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम तो इतने नेक हो गए हैं, बस कुरान पढ़ लिया, उधर सीख रहे हैं, उधर सुना रहे हैं, उधर कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के हकूक हम रोज मार रहे हैं, रोज दबा रहे हैं, उसको कोई बड़ी चीज ही नहीं समझ। तो ये देखे क्या मामला हो रहा है, अब अल्लाह के सामने वो उनकी लाइनें लगी हुई है और ये बंदा अकेला खड़ा है। अब इसकी वो नेकी भी वो लेके जा रहा है, वो नेकी वो लेके जा रहा है, अब वो भी ना नमाजें रही, अब ना उसके पास तहज्जुदें रही। वो तो बड़ा खुश होके आया था, मेरे पास तो रोज मैं तो तहज्जुद गुजार हूँ, तो तहज्जुद गुजार हो, लेकिन देखो लोगों को तकलीफ तुम किससे पहुंचाती हो, अपनी जुबान से। हाँ, तो अब ये सारी चीजें अब लोग लेके जाते जा रहे हैं, अब क्या नेकियां खत्म हो गई। अब वो खड़े में कि हमें तो अभी चाहिए, इसने तो मेरे साथ ये ज्यादती की, उसने मेरे साथ ये किया, अब क्या होगा। उनके गुनाह इसके ऊपर डाले जा रहे हैं, उनके गुनाह इस पे डाले जा रहे हैं, किसी की चोरी डाल दी इसके ऊपर, किसी का सूद खाना इसके ऊपर आ गया, किसी का झूठ बोलना इसके ऊपर आ गया। अब ये उनके गुनाहों तले ऐसा दब जाएगा कि ये जहन्नुम में चला जाएगा। फरमाया ये है मुफलिस, ये है गरीब, जिसको आप गरीब कहते हैं ना, मुफलिस गरीब, ये गरीब है। कभी आपने ऐसा गरीब भी देखा कि कंगाल हो जाए, जो दिवालिया हो गया उसका, इतनी नेकियां लेकर आया था और देखो कैसे रह गया। तो हकूकुल इबाद के ऊपर ये लंबी तरीन आयत थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और एक्सेप्शनल केस है, वह इन कुन तुम अला सफर, और अगर तुम सफर में, वलम तजिदू कातिबन, और ना तुम पाओ कोई लिखने वाला, कोई लिखने वाला भी नहीं है वहां पे, सफर में जा रहे हैं जाहिर है, तो कोई कातिब नहीं मिल रहा, तो क्या करो, फरिहान मकबूदा, तो रहन रख दो कब्जा की। रहन क्या चीज होती है, रहन वो चीज होती है कि मसलन मिसाल के तौर पे ए अगर बी को कर्ज दे रहा, तो ए कहता है कि जी आप गारंटी के तौर पे मुझको मेरी कोई चीज तो अपनी मेरे पास रखवा देना, तो बी कहती है कि अच्छा मेरे पास ये जेवर है, ये मेरा जेवर आप अपने पास रख लें, ए को दे देती है जेवर, और इसके मुकाबले में आप मुझे मिसाल के तौर पे ये जेवर तकरीबन 10,000 का होगा, तो ऑलमोस्ट 10-11 हजार की रकम आप मुझे दे दें, ठीक है। तो ए अब गारंटी के तौर पर उसका जेवर रखती है और बी को पैसे दे देती है। अब बी जब ये कर्ज अदा करेगी वापस ना, तो ए उसको उसका जेवर दे देगी। अगर बी कभी ये रकम ना अदा कर सकी तो फिर क्या होगा, ए कम से कम ये तो करेगी ना कि जेवर बेच के और अपने तो पैसे वापस ले ले, उसको तो ना नुकसान हो। तो ये एक गारंटी रखवाई जाती है, जिसको कहते हैं ना प्लेज करा लिया कोई चीज, कोई लोग अपना घर प्लेज करा लेते हैं या जेवर या कोई ऐसी चीज प्लेज करा देते हैं। तो इस तरह इंसानों के दरमियान आपस में भी ये मामलात हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मसला नहीं है कि कोई कातिब अगर मिल भी जाता है मिसाल के तौर पे, या सफर नहीं भी है, फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं जी मैं आपको कहाँ जानू, क्या पता कल को क्या मामलात होते हैं, तो मैं तो नहीं ट्रस्ट करती, आप ऐसा करें मुझे गारंटी के तौर पर कोई चीज मेरे पास रख पाए, तो उसको कहते हैं रहन। तो रहन जब उसके कब्जे में दे दिया, उसको दे दिया, ये नहीं कि मैं अच्छा मैं अपनी जेवर रखवाती हूँ लेकिन जेवर मैं अपने पास ही रखे छोड़ू, नहीं उसको देंगे आप जेवर। अब जब तक आप उसका कर्ज अदा नहीं करते वो आपको जेवर नहीं वापस देंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि वो उस जिसने कर्ज दिया है ना, वो ये नहीं कर सकती कि कल को वो किसी पार्टी में जाए तो वो जेवर पहन के चली जाए, नहीं वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, उससे फायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि अगर उसने उससे फायदा उठाया तो ये क्या होगा, ये सूद हो जाएगा, ठीक है। या कि जैसे किसी ने अपने मकान वगैरह गारंटी के तौर पर प्लेज करा देते हैं, तो आप मकान दूसरे को दिया तो वो जाके उसमें रहना शुरू कर दे, या वो मकान को किराए पे देके किराया खाना शुरू कर दे, नहीं ये नहीं कर सकता वो कर्ज देने वाला, वो अपने पास रखेगा, ये उसके पास अमानत है। अब अमानत वो वापस कब कर देगा, जिस वक्त उसको उसका जो उसने कर्ज दिया था वो उसको वापस मिल जाएगा। इससे अगर कोई किराया आता है या कोई फायदा हो रहा है तो वो उसी को जाएगा जो कर्ज लेने वाला। फ इन आमिन बादुकुम बादन, फिर अगर एतमाद हो जाए, एतमाद इत्मीनान हो जाए, यानी अगर उसने अमीन जाना तुम में से किसी एक ने दूसरे को अमीन जाना, अमानतदार जाना, मसलन मसलन कर्ज देने वाले ने कर्ज लेने वाले को अमीन जाना, तो अब क्या चाहिए? फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहू, तो उसको चाहिए कि वो भी फिर कर्ज को वापस कर दे। अगर सिक्योरिटी में उसने कुछ नहीं रखवाया, कुछ नहीं रखा कर्ज देने वाले ने, जिसने दिया है उसने कहा कि नहीं जी मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, कोई मसला नहीं है, आप कोई भी चीज ना रखवाएं, आपको मैं कर्ज देती हूँ, तो अब क्या है? चाहिए कि वो शख्स जो मकरूज है वो इस अमानत को लौटा दे, यानी जो कर्ज है अब उसको लौटाना चाहिए अच्छी तरह, वक्त पे अदा कर दे अब। और दूसरी तरफ भी हो सकता है, जो जिसको इसने कर्ज लेने वाले ने ट्रस्ट किया कर्ज देने वाले को कि मैं मसलन अपना जेवर उसको पास रखवा रही हूँ और उससे कर्ज ले रही हूँ, तो मैंने अपना जेवर इसको ट्रस्ट करके दिया। अब ये नहीं है कि वो जेवर अब रख ही ले, हजम कर जाए, अब मैं उसको जब कर्ज लेके वापस जाती हूँ उसके पास, ये मैंने आपका कर्ज लौटा दिया, अब आप मेरा जेवर मुझे दे दें, तो ये नहीं कहेगी कि नहीं मुझे तो अब पसंद आ गया है ये सेट और मैं नहीं रखना है और मैं तो नहीं देती अब। नहीं, ये उसके पास अमानत थी, उसको वापस करना चाहिए। तो दिस गोज बोथ वेज, ओके, बोथ वेज जाएगा। अगर उसने इसके ऊपर ट्रस्ट किया है और इसको बगैर कोई रहन रखे हुए कोई चीज के वो इसको कर्ज दे दिया, तो मकरूज को चाहिए भाई अमानत वापस करे, टाइम पे कर्ज दे दे वापस। और अगर मकरूज जो है उसने कोई चीज रहन रखवाई है, तो अब जिसके पास उसने रहन रखवाई है उसको भी चाहिए कि जब ये कर्ज लेके वापस अदा कर दे तो वो भी रहन रखी हुई चीज को वापस दे दे, ठीक है? तो उसको चाहिए अमानत वापस कर दे, क्योंकि वो अमीन बनाया गया ना। वलियत्तकिल्लाह रब्बहू, और चाहिए कि अल्लाह से डरे जो रब है उसका। फिर खुदा खौफी की बात आ गई, फिर तकवा की बात आ गई। देखिए तकवा 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 कितनी गर्दान है तकवा की, इसीलिए कुरान पाक में 200 से ऊपर दफा तकवा की बात आई है। अल्लाह का डर, अल्लाह का डर, इसीलिए बार बार जो हुक्म आता है ना, सिर्फ अल्लाह ताला हुक्म नहीं दे देते कि ये करो ये करो ये करो, अल्लाह के डर के साथ तुम चलोगे तो ये हुक्म भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, और अगर तुम्हारे अंदर तकवा नहीं है ना तो ये सारे अहकाम ऐसे होंगे, हाय अब ये भी करना पड़ेगा, हाय अब ऐसा भी होगा। नहीं, तकवा होगा, अल्लाह का खौफ होगा कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना ना, फिर आप देखिएगा कोई हुक्म आपको मुश्किल लगेगा ही। याद रखें, अगर आपको कोई हुक्म मुश्किल लग रहा है तो तकवा पे गौर करें, मेरे अंदर तकवा कितनी कमी, तकवा में हुक्म बोझल नहीं होता, आपके अंदर तकवा की कमी है। इसीलिए देखें तकवा की एक मिसाल है मुस्नद में, मुस्नद अहमद में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने दूसरे शख्स से 1,000 दीनार उधार मांगे, उसने कहा गवाह लाओ, उसने जवाब दिया अल्लाह की गवाही काफी है। अब उसने कहा जमानत लाओ, उसने कहा अल्लाह की जमानत काफी है। उसने कहा तूने सच कहा है, ठीक है, एक अदायगी की वो अजल मुकर्रर हो गई कि हाँ ये स्पेसिफिक डेट है उसको मैं वापस करूंगा, तो उसने उसको 1,000 दीनार गिन के दे दी। अब वो कहीं समुंदर का उसने सफर किया, कहीं चला गया वो आदमी जो जिसने कर्ज लिया था, अपने काम से जब फारिग हुआ और वो जो डेट थी मियाद थी वो पूरी होने को आई, तो समुंदर के करीब आया कि कोई कश्ती मिल जाए, कोई जहाज मिल जाए, मैं इसमें बैठ के जाऊं, रकम अदा करके आऊं, लेकिन कुछ भी ना मिला। जब देखा कि वक्त पे पहुंच ही नहीं सकूंगा, तो उसने एक लकड़ी ली, उसको बीच में से ना कट किया और उसमें 1,000 दीनार रख दिया और एक पीस ऑफ पेपर भी रख दिया, फिर मुंह को बंद करके अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार तुझे खूब पता है मैंने फलां शख्स से 1,000 दीनार कर्ज लिए थे, उसने मुझे मुझसे जमानत मांगी थी तो मैंने तुझे जामिन बनाया था और वो इस पे खुश हो गया था, उसने गवाह मांगा मैंने गवाह भी तुझे को बनाया वो इस पे भी राजी हो गया, अब जबकि अपना कर्ज अदा करने आया हूँ तो कश्ती ही नहीं मिल रही, अब मैं उस तक रकम कैसे पहुंचाऊं, और वो समंदर में डाल देता, दुआ करता है ये रकम या अल्लाह तू ही अब उस तक पहुंचा दे। फिर वो जब उसने लकड़ी को समंदर में डाल दिया खुद चला गया, लेकिन फिर भी कश्ती ढूंढता रहा कि कहीं मिल जाए तो मैं जाऊं अब जाके उसको देख लूं। अब यहां तो इधर तो ये हुआ, वहां वो जो आदमी था ना जिसने कर्ज दिया था, जब उसने देखा कि वक्त पूरा हो गया, आज इसको आना चाहिए, आज की डेट में इसने कहा था, तो वो गया समुंदर के पास जाके खड़ा हो गया। तो अब कि अब आए अब मुझे मेरी रकम दे, या किसी के हाथ हो सकता है भिजवाएगा। मगर शाम हो गई, कोई भी नहीं आया, ना कोई कश्ती आई ना कोई। तो अब ये वापस लौटा, किनारे पे एक लकड़ी देखी, तो उसने ये समझ के उठा ली कि खाली हाथ तो जा ही रहा हूं, इस लकड़ी को ले जाता हूँ, फाड़ के सुखा लूंगा, जलाने के काम आएगी घर में। तो घर पहुंच के जब उसको काटता है तो खनाखन बचती भी जो वो गोल्ड कॉइन्स थे वो निकलते, गिनता है तो पूरे 1,000। वहीं पे उसकी वो पर्ची पे नजर पड़ती है, उसको उठा के पढ़ता है। फिर एक दिन वो ही आदमी आता है जिसने उससे कर्जा लिया था, वो आके 1,000 दीनार उसको देता है, कहता है ये लें आपकी रकम और मुझे प्लीज माफ कर देना, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं वादा खिलाफी ना करूं, लेकिन कश्ती के ना मिलने की वजह से मजबूर हो चुका था और इसलिए मैं देर मुझे लग गई, आज कश्ती मिली है, मैं आपकी रकम लेके हाजिर हूँ। उसने पूछा क्या मेरी रकम आपने भिजवाई भी है? उसने कहा मैं तो कह चुका हूँ मुझे तो कश्ती मिली ही नहीं। कहता लेकिन आपने भेजी भी है रकम? कहने मैंने कुछ कश्ती तो नहीं मिली। उसने कहा अपनी रकम वापस लेके खुश होके चले जाओ, आपने जो रकम लकड़ी में रखी थी और अल्लाह तवक्कल डाल दी थी उसे अल्लाह ने मुझ तक पहुंचा दिया, मेरे मुझे रकम वसूल हो गई। ये हदीस बुखारी में भी आई है, 7 जगह पे आई है ये हदीस। यानी कितना तकवा था दोनों के अंदर, एक को देने की फिक्र थी और दूसरे ने भी ये नहीं कहा इसको कौन सा पता कि मेरे पास तो पहुंच गई भी रकम, लाओ अब दूसरे एक और 1,000 ले लेता हूँ, इसको थोड़ी पता है। और उसने भी ये नहीं सोचा कि मैंने भेज तो दिए मैं 1,000, अब मुझे क्या जरूरत है दोबारा लेके चल पड़ू, बस ठीक है अल्लाह का सपोर्ट कर दे, खुद ही उसने अल्लाह ने पहुंचाने हैं, बस ठीक है मामला खत्म मेरा, मैंने तो भेज दिया ना। उसने भी ये नहीं, दोनों के अंदर अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा था। वला तख्तुमु शहादा, और शहादत को मत छुपाओ, जो गवाही है उसको नहीं छुपाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाह ना बताऊं? जो इंसान गवाही मांगने से पहले ही गवाही देने को तैयार हो जाए, यानी उसके पीछे भागना ना पड़े, उसकी मिन्नते समाजते ना करनी पड़े, वो खुद आके खड़ा हो जाए और गवाही दे, वो खैरु शुहदा है। तो गवाही को छुपाना नहीं, जब गवाही देने का वक्त आए तो गवाही दो, इसलिए कि गवाही को छुपाना जो है ना वो कबीरा गुनाह है। पता है अगर मामले का, सामने देखा हुआ, अगर विटनेस है तो बस, इसलिए कि अब हमें जाना पड़ेगा, अब हमें ये होगा, तो इस वजह से नहीं। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु, और जो छुपाएगा गवाही को, छुपाएगा उसको का मतलब क्या है, हा की जमीर किस तरफ जा रही है, गवाही को, जो गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार है। दिल गुनाहगार कैसे है, क्रिमिनल माइंडेड हो गया ना वो, इसलिए कि उसका दिल जानता है कि सच क्या है फिर भी वो उसको छुपा रहा है, और जिसका दिल गुनाहगार हो गया तो उसका तो फिर कुछ भी नहीं रहा, इस गुनाह की जड़ें उसके दिल में। एक होता है ना इंसान अनइंटेंशनली कोई गुनाह करता है, इतना मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी, बस भूल के उसके मुंह से कोई बात निकल गई, कोई भूल चूक से गैर इरादी तौर पर कोई इंसान से कोई गलती हो गई, नीयत नहीं थी उसने की, तो वो तो चलो ऐसे गुनाह हैं जिनके ऊपर वो गुनाह मतलब उन्होंने अपनी रूट्स पक्की नहीं की, मगर जो इंटेंशनली इंसान जानता है जान बूझ के फिर वो उसके बाद जाके वहां पे झूठ बोलता है या गवाही को छुपा लेता है, सच्ची बात नहीं बताता, तो ये वो गुनाह है जिसकी जड़ें दिल में घुस गई है, पेनिट्रेट कर गई अंदर तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगाह हो जाओ, जिस्म में एक पीस ऑफ मीट है, लोथड़ा है, ऐसा है कि अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त है, सही है, और अगर उसमें रोग आ जाए, वो बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है, वो है दिल, सारा मामला ही दिल का। देखो अगर आपका दिल सही है ना तो सारे मामला सही हो जाएंगे, कहीं गलती भी होगी तो वो इंटेंशनल नहीं होगी, और अगर दिल में खराबी है ना तो फिर तो प्लान बना बना के इंसान गुनाह करता है। वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको जानने वाला। ये है तकवा के लिए, अल्लाह को इल्म है तभी आपको अंदर तकवा आएगा। कयामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम ये समझते थे कि बहुत सारे तुम्हारे काम हमारे इल्म में ही नहीं, तुम ये समझते थे। जैसे इंसान समझता है ना कि पता नहीं अल्लाह को तो पता ही नहीं चला था, इतनी छोटी छोटी बात को अल्लाह कहाँ हिसाब किताब करेगा, इतनी सी बात का भला। मैं ये माली मामलात में जरा सा ही तो हेर फेर किया, इसे क्या फर्क पड़ता है, इतनी छोटी सी बात। इतनी छोटी सी बात इंसानों से छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं छुपा सकते। तुम ये समझते थे कि तुम्हारे कुछ काम अल्लाह को पता ही नहीं चलेंगे। इस आखिरी बात का ताल्लुक सारी पिछली बातों से, जो भी तुम अमल करते हो, लिखने वाला जो लिख रहा है, गवाह जो गवाही दे रहा है, जो कर्ज देने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, तुम सब देख लो कि तुम्हारी हर अमल को अल्लाह जानते। पिछली आयत के एंड में भी इल्म की बात आई, इस आयत के एंड में भी इल्म की बात आई। जब आपके जहन के अंदर ये होगा ना कि अल्लाह को पता है, उसको इल्म है, वो देख रहा है, फिर सारे मामला खुद ब खुद सीधे होने शुरू हो जाएंगे। और जहां पे ये बात भूलेगी तो फिर मामला में खराबी आएगी। खास तौर पे ये बात मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी कि जब इंसान अल्लाह के इस हुक्म को नहीं मानता, अगर मसलन ना लिखता है, ना ऐसी ट्रांजेक्शंस कर रहा है और फिर कहता है नहीं हमें तो शर्म आती है लिखते हुए, हम कैसे लिखे, यहाँ लिखवाए, दूसरा क्या कहेगा कि इसको मेरे को ट्रस्ट नहीं है, तो इसका अंजाम क्या। इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उधार दे वो लिखे और जो बेचे वो गवाह कर ले। और अबू सुलेमान मरअशी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हजरत काब की सोहबत बहुत उठाई, उन्होंने एक दिन अपने पास आने वालों से कहा, तुम उस मजलूम को भी जानते हो जो अल्लाह को पुकारता है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तुम जानते हो। अरे मजलूम तो आपको पता है ना, मजलूम की तो आह अर्श तक पहुंचती है, लेकिन एक ऐसा मजलूम है तो वो मजलूम ही, तुम किसी ऐसे मजलूम को जानते हो जो अल्लाह को पुकारता है, हाय अल्लाह मेरे साथ ये जुल्म हो गया जुल्म हो गया, लेकिन उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। लोगों ने कहा ये किस तरह। फरमाया ये वो शख्स है जो एक मुद्दत तक के लिए उधार लेता है, ना गवाह रखता है, ना लिखता पढ़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, फिर मुद्दत गुजरने पर तकाजा करता है, यानी अब कहता है कि मुझे मेरा कर्ज वापस दो, और दूसरा बंदा इनकार कर देता है। अब ये अल्लाह से दुआ करता है लेकिन अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता, इसलिए कि उसने काम जो किया है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया है, ये अपने रब का नाफरमान हुआ है। समझ आई ना, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आयत लिखने के ऊपर, गवाह रखने के ऊपर इतनी बड़ी आयत उतार दी, इसने एट द फर्स्ट प्लेस अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। अब चाहे आप जितना मर्जी कहो, अल्लाह ही इसको पूछे जिसने मेरे पैसे मार लिए, जिसने ये कर लिया, अब अल्लाह ही मुझे देगा, भाई अल्लाह ताला अब दुआ नहीं कबूल करेगा, इसलिए कि आपने एट द फर्स्ट प्लेस अल्लाह की नाफरमानी की। ठीक है, तो आप तो ये समझते हैं ना कि हाई इस बेचारे के पैसे किसी ने मार लिए हैं तो ये कितना मजलूम है। मजलूम तो है, लेकिन इस मजलूम को अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और यहां से हमें एक बात और भी पता चली कि मैंने आपको जैसे बताया था ना, डिक्टेट कराना किसका काम है, जो कर्ज ले रहा है, और गवाह बनाना किसका काम है, गवाह लेकर आना किसका काम है, जो कर्ज दे रहा है। ठीक है, इससे ये भी पता चला। अच्छा, फिर इसी तरह एक और रिवायत में आता है ऐसे शख्स के लिए कि जो फिर कर्ज देता है लेकिन उसके बाद फिर वो लिखता नहीं। ये इब्ने मर्दवे की रिवायत है, तीन शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह से दुआ करते हैं लेकिन दुआ कबूल नहीं की जाती। एक तो वो जिसके घर में बद-अख़लाक औरत हो और वो उसको तलाक ना दे, दूसरा वो जो किसी यतीम का माल उसकी बलूगत के पहले ही उसको सुपुर्द कर दे, तीसरा वो जो किसी का माल कर्ज दे, किसी को माल कर्ज दे और गवाह ना रखे। तुमने खुद ही नहीं गवाह रखे, कर्ज देने वाला मुजरिम बन जाता है कि जब वो ना गवाह रखता है ना लिखवाता है। और यहाँ से ये पता चल गया ना कि कर्ज देने वाला गवाह रखेगा, इसलिए कि यहाँ पे कहा गया तीसरा वो शख्स जो किसी को माल कर्ज दे और गवाह ना रखे, तो इसने गवाह रखने के, यहाँ से ये साबित हो गया। और इसी तरह ये जो पीछे बात गुजरी है कि एक ट्रांजेक्शन जो हैंड टू हैंड होती है उसके ऊपर ना गवाह रखने की जरूरत है और ना ही लिखने की जरूरत है, और इसके बारे में भी हदीस आती है मुस्नद अहमद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अराबी से एक घोड़ा खरीदा और अराबी आपके पीछे पीछे आपके घर की तरफ रकम लेने के लिए चला। जैसे इंसान कहता है ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं अभी देती हूँ तुम्हें, तो ये मुझे जरा $10 देना, मैं अभी तुम्हें देती हूँ, तो उसके लिए लिखने पढ़ने की नहीं जरूरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको फरमाया कि मैं तुम्हें घर पे देता हूँ, चलो आ जाओ, तो वो पीछे पीछे चल पड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा जल्दी आगे निकल गए, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा था, तो लोगों को ये नहीं पता था कि ये घोड़ा बिक गया, तो लोगों ने कीमत लगानी शुरू कर दी कि भाई मैं इतने देता हूँ इतने देता हूँ, यहाँ तक कि जितने कीमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उसने बेचा था उससे ज्यादा कीमत लग गई। ठीक है ना, जो रास्ते में लोग थे ना उनको थोड़ी पता है कि ये भाई घोड़ा बिक चुका है, अब वो तो कीमत लगा रहे हैं, अब उससे ज्यादा कीमत जब लग गई, अब इसकी नीयत खराब हो गई इस बंदे की। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दे के कहा, हजरत या तो घोड़ा इसी वक्त आप लें नकद, या मैं और किसी के हाथ बेच देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के रुके, फरमाने लगे तू तो इसे मेरे हाथ बेच चुका है, तो ये क्या कह रहा है? उसने कहा नहीं अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गलत कहता है, मेरे और तेरे दरमियान मामला हो चुका है। आप लोग इधर उधर से बीच में बोलने लगे। उस जो बद्दू आदमी था ना उसने कहा अच्छा फिर कोई गवाह लेकर आए कि मैंने आपके हाथ बेच दिया। मुसलमानों ने बहुत कहा उसको कि बदबख्त तू अल्लाह के नबी के साथ ये कर रहा है, आपकी जुबान से तो हक ही निकलता है, लेकिन वो यही कह जा रहा था नहीं लाओ गवाह लेकर आओ गवाह लेकर आओ। इतने में हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला आ गए और जो बद्दू था उसके इस कॉल को सुन के फरमाने लगे मैं गवाही देता हूं कि तूने बेच दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बेचा। आपने फरमाया तू कैसे गवाही दे रहा? हजरत उसैमा ने फरमाया आपकी तस्दीक और सच्चाई की बुनियाद पे ये शहादत दी है, हम जब आपके ऊपर ईमान ले आए हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही से जो बताते हैं जब उसके ऊपर ईमान ले आते हैं तो फिर ये क्या चीज है? हम बगैर देखे हमने तो नहीं देखा जिब्राइल अलैहि सलाम को आते हुए, हमने तो नहीं देखा वो क्या बात लेकर आए, लेकिन जब हम उसके ऊपर आंखें बंद करके ईमान ले आते हैं तो फिर क्या इस पे नहीं लाएंगे? उस दिन आपने फरमाया था आज से हजरत खुजैमा की गवाही दो गवाहों के बराबर है। नहीं तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब यानी नकद का मामला मैं आपको बताना चाह रही थी कि उसके ऊपर फिर कोई गवाह या लिखत पढ़त की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ताला हमें ये आयात सीखने की समझने की उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे अंदर तकवा पैदा फरमा दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم